एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आजकल की जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं ना, उनमें से एक को बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। किताब का नाम है नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
हाँ, और इसे लिखा है हना रिची ने। और ये किताब खास इसलिए है, जैसा आपने कहा, कि आजकल पर्यावरण को लेकर वो जो इको एंग्जाइटी कहते हैं ना,
हाँ हाँ वो चिंता, वो डर,
बिल्कुल एक निराशा का माहौल है, जैसे लगता है बस सब खत्म ही होने वाला है। तो ये किताब इसी सोच को चैलेंज करती है, लेकिन किसी झूठी उम्मीद से नहीं, बल्कि आंकड़ों और फैक्ट्स के आधार पर।
अच्छा, तो सबसे पहले ये हना रिची हैं कौन, मतलब क्यों हमें इनकी बात सुननी चाहिए? देखिए, हना रिची जो हैं वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सीनियर रिसर्चर हैं, और शायद इससे भी ज्यादा लोगों ने जानते हैं आ वर्ल्ड इन डेटा से।
ओ हाँ, वो कमाल की वेबसाइट है जहाँ मुश्किल डेटा को इतना आसान बना देते हैं।
बिल्कुल, उसी प्रभावशाली ऑनलाइन पब्लिकेशन की वो हेड ऑफ रिसर्च हैं, तो उनका काम ही यही है, दुनिया भर के मुश्किल आंकड़ों को समझना और समझाना।
अच्छा, तो वो आंकड़ों की दुनिया से है, एक्टिविस्ट नहीं?
एग्जैक्टली, और यही उनकी खासियत है। वो कोई एक्टिविस्ट या लॉबिस्ट नहीं है, डेटा साइंटिस्ट हैं। बड़े बड़े डेटा सेट को खंगाल कर ग्लोबल ट्रेंड्स को समझती हैं, गरीबी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सब कुछ। वो एक तरह से जटिल साइंटिफिक रिसर्च और आम लोगों के बीच पुल का काम करती हैं, और उनका नजरिया पूरी तरह फैक्ट्स पर आधारित है, किसी आइडियोलॉजी पर नहीं। इसीलिए जब वो पर्यावरण पर लिखती हैं तो उनकी बात में एक वजन होता है, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है।
समझ गए। तो नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड किताब का मतलब मेन आइडिया क्या है? क्या वो कह रही है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। वो इसे कहती हैं जरूरी आशावाद, अर्जेंट ऑप्टिमिज्म, या आप कह सकते हैं सबूत आधारित आशावाद,
एविडेंस बेस्ड ऑप्टिमिज्म। हाँ,
मतलब ये नहीं कि समस्याएं जैसे क्लाइमेट चेंज है, बायोडायवर्सिटी का लॉस है, ये छोटी हैं। वो मानती हैं कि ये समस्याएं बहुत सीरियस हैं, लेकिन साथ ही वो आंकड़ों से ये दिखाती हैं कि ये समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, सॉल्वेबल हैं।
जरूरी आशावाद मतलब उम्मीद रखना जरूरी है, लेकिन हवा में नहीं, सबूतों के साथ।
एकदम सही पकड़ा। किताब कहती है कि हमें प्रॉब्लम्स की गंभीरता को पूरी तरह स्वीकार करना है, मानना है, लेकिन साथ ही ये भी मानना है कि हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, और पिछली सफलताओं के उदाहरण भी हैं। ये उस निराशा के गहरे गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है जिसमें अक्सर पर्यावरण की बातचीत हमें धकेल देती है, यू नो।
किताब 7 मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियों पर फोकस करती है। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई।
हाँ, खाद्य उत्पादन, जैव विविधता का नुकसान, समुद्री प्लास्टिक, और वो ओवर फिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना।
लेकिन शायद सिर्फ लिस्ट से ज्यादा जरूरी ये है कि वो इन मुद्दों को देखती कैसे है, उनका अप्रोच क्या है।
हाँ, उनका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर मुद्दे के लिए वो पहले दिखाती हैं कि आमतौर पर समस्या कैसे बताई जाती है, अक्सर बहुत डरावने तरीके से, है ना।
हाँ बिल्कुल, हेडलाइंस वैसी ही होती हैं।
फिर वो लंबे समय का डेटा और कॉन्टेक्स्ट सामने रखती हैं, और यहीं कई बार वो चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं, जैसे कि शायद हम नुकसान के पीक पॉइंट को पार कर चुके हैं।
अच्छा
हाँ, और आखिर में वो प्रैक्टिकल, बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान बताती हैं जो या तो काम कर रहे हैं या हमारी पहुंच में हैं। तो लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे एक एक्शन लेने लायक समझ में बदलना है।
चलिए इस तरीके को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। वायु प्रदूषण से शुरू करते हैं। इसे वो एक छुपी हुई सफलता की कहानी कहती हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि खासकर भारत में तो हम रोज जूझते हैं इससे।
हाँ, और रिची इस बात को नकारती नहीं है कि ये आज भी, खासकर डेवलपिंग देशों में, एक बहुत बड़ी और जानलेवा समस्या है, लेकिन वो इतिहास और आंकड़ों को देखती हैं। लंदन का 1952 का ग्रेट स्मॉग याद है?
हाँ, सुना है उसके बारे में, भयानक था वो तो।
हजारों लोग मारे गए थे, उसके बाद वहां क्लीन एयर एक्ट आया और स्थिति मतलब नाटकीय रूप से सुधरी। इसी तरह अमेरिका और यूरोप में वो 1970 के दशक के बाद से सख्त नियम और नई तकनीकें आईं, जैसे गाड़ियों में कैटलिटिक कन्वर्टर, पावर प्लांट में स्क्रबर।
हाँ।
इनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे प्रदूषकों में अंदाजा लगाइए कितना,
कितना,
50%,
80 से 90% तक की कमी आई है।
अरे वाह,
80-90%, ये तो वाकई बहुत बड़ा सुधार है।
बिल्कुल। और यहीं पर वो पर्यावरण कुज़नेट्स कर्व का आइडिया आता है।
कुज़नेट्स कर्व ये क्या है?
सिंपल शब्दों में ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, शुरुआत में प्रदूषण बढ़ता है, फिर एक पीक पर पहुंचता है और उसके बाद घटने लगता है। क्यों? क्योंकि तब देश स्वच्छ तकनीकों और नियमों में इन्वेस्ट करने लायक हो जाता है।
तो क्या इसका मतलब है कि भारत या चीन जैसे देश अभी उस चढ़ाई वाले हिस्से पर है लेकिन उम्मीद है कि वो भी नीचे उतरेंगे?
हाँ, शायद वो पीक के करीब हैं या उसे पार कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो 1970s के दशक की टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर और सस्ती है। तो सैद्धांतिक रूप से ये देश पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से इस कर्व से नीचे उतर सकते हैं। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, डीकपलिंग।
डीकपलिंग इसका क्या मतलब है?
डीकपलिंग का मतलब है आर्थिक विकास, GDP और पर्यावरणीय क्षति जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच का जो ऐतिहासिक लिंक था ना, उसे तोड़ना।
अच्छा, मतलब पहले ये माना जाता था कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो एमिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
हाँ बिल्कुल, पर अब ऐसा नहीं है, ये लिंक टूट रहा है।
सच में? इसके सबूत हैं क्या?
बिल्कुल हैं। सबसे बड़ा उदाहरण क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में दिखता है। पिछले सिर्फ एक दशक में आप सोचिए, सौर पैनलों की लागत लगभग 90% तक गिर गई है।
90%?
हाँ, पवन ऊर्जा भी बहुत सस्ती हुई है, बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। नतीजा, अमेरिका, UK, जर्मनी, फ्रांस समेत दर्जनों देशों ने अपने उत्सर्जन का पीक यानी चरम बिंदु पार कर लिया है। उनकी इकॉनमी बढ़ रही है लेकिन उनका कुल उत्सर्जन या तो स्थिर है या घट रहा है।
ये तो वाकई उम्मीद जगाने वाली बात है। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या हम बदल सकते हैं, बल्कि ये है कि कितनी तेजी से।
एकदम सही, बिल्कुल। और तेजी लाने के लिए तीन एरियाज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिजली कैसे बनाते हैं, खाना कैसे उगाते और खाते हैं, और हम चलते फिरते कैसे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन।
खाने की बात आई तो वनों की कटाई और भोजन वाले चैप्टर पर आते हैं। ये दोनों मुद्दे तो बहुत जुड़े हुए लगते हैं ना?
हाँ, बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। देखिए, दुनिया भर में जंगल कटने की जो एक लगातार वाली इमेज हमारे दिमाग में है, अमेज़न जल रहा है वगैरह, रिची कहती हैं कि अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो पीक डीफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई का जो चरम दौर था वो शायद 1980 या 90 के दशक में ही बीत चुका है।
क्या सच में? ये तो बहुत चौंकाने वाला है। मतलब अब जंगल कट नहीं रहे?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल इलाकों में, अमेज़न में, साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी कटाई हो रही है, ये सच है। लेकिन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक कि चीन और भारत जैसे देशों में भी पिछले कुछ दशकों में फॉरेस्ट कवर असल में बढ़ा है या स्थिर हुआ है। तो ग्लोबल लेवल पर कुल मिलाकर स्थिति उतनी भयानक नहीं है जितनी 30-40 साल पहले थी। और आज भी जो कटाई हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एग्रीकल्चर, खेती।
खेती मतलब अनाज उगाने के लिए?
अनाज से ज्यादा मवेशियों के लिए चारागाह बनाने के लिए, सोयाबीन उगाने के लिए जो ज्यादातर जानवरों के चारे में ही जाता है, और पाम तेल के बागान लगाने के लिए।
तो समाधान फिर से हमारी फूड सिस्टम में ही छिपा है।
बिल्कुल, यहीं पर लैंड स्पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है।
लैंड स्पेयरिंग?
हाँ, यानी कम जमीन का इस्तेमाल करके ज्यादा कुशलता से, इंटेंसिव फार्मिंग करके ज्यादा भोजन उगाना, ताकि ज्यादा जमीन प्रकृति के लिए मतलब जंगलों और वाइल्ड लाइफ के लिए बच सके।
और क्या ये मुमकिन है? दुनिया की आबादी तो बढ़ रही है, 10 अरब लोगों को खिलाना है, वो भी कम जमीन इस्तेमाल करके।
रिची का जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। वो हरित क्रांति का उदाहरण देती है। नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों ने कैसे गेहूं और चावल की पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी करके अरबों लोगों को भुखमरी से बचाया था।
हाँ, वो तो इतिहास है।
आज हमारे पास उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी और ज्ञान है। हमें क्या करना है? पैदावार बढ़ानी है, भोजन की बर्बादी कम करनी है जो कि बहुत ज्यादा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने खानपान को बदलने की जरूरत है।
खानपान बदलना मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं?
हाँ देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। बीफ यानी गाय का मांस और लैम्ब यानी भेड़ का मांस को पैदा करने में बहुत ज्यादा जमीन लगती है, बहुत पानी लगता है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बहुत ज्यादा होता है।
अच्छा,
उसकी तुलना में चिकन, अंडे और खासकर पौधे आधारित भोजन, दालें, सब्जियां, अनाज, इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही कम होता है। तो कम मांस खाना, खासकर रेड मीट, पर्यावरण के लिए सबसे असरदार व्यक्तिगत कदमों में से एक है।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब जरा उन मुद्दों पर आते हैं जहां अक्सर छोटी छोटी चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक। समुद्री प्लास्टिक के बारे में किताब क्या कहती है?
स्ट्रॉ बैन वगैरह।
किताब मानती है कि समुद्री प्लास्टिक एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहती है कि इस पर जो पब्लिक बातचीत होती है ना, वो अक्सर गलत दिशा में जाती है।
प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन लगाना या कॉटन बड बदलना, ये सब ठीक है अपनी जगह, पर यह समस्या की जड़ पर चोट नहीं करते।
तो असली जड़ क्या है फिर?
असली मुद्दा है कुछ मिडिल इनकम देशों में, खासकर एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन का बेहद खराब होना। ज्यादातर प्लास्टिक जो समुद्र में जाता है वो दुनिया की गिनी चुनी 10-20 नदियों से आता है।
अच्छा, जैसे?
जैसे चीन में यांगजी नदी है, फिलीपींस में पासिग है या अपने आप गंगा। इन जगहों पर कचरा इकट्ठा करने और उसे सही ढंग से ठिकाने लगाने का सिस्टम या तो है नहीं या बहुत कमजोर है।
तो समाधान क्या है? स्ट्रॉ बैन नहीं तो क्या?
समाधान है उन देशों में बड़े पैमाने पर कचरा प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, जैसे सुरक्षित लैंडफिल्स बनाना, रिसाइक्लिंग प्लांट्स लगाना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना जहां कचरे से बिजली बनती है। ये उन जगहों पर करना जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये व्यक्तिगत शुद्धता या गिल्ट से कहीं ज्यादा बड़ा और सिस्टमिक समाधान है।
हाँ, ये बात समझ में आती है।
और यहीं पर मैक्रोप्लास्टिक बड़ी चीजें जैसे बोतलें, थैली और माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे कण का अंतर समझना भी जरूरी है। अभी जो कचरा नदियों से बहकर समुद्र में जा रहा है उसमें बड़ा हिस्सा मैक्रोप्लास्टिक का है, जिसे बेहतर कचरा प्रबंधन से रोका जा सकता है।
ये सिस्टम वाला समाधान वाली बात मुझे जैव विविधता और ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने के मामलों में भी दिखती है। वहां भी तो बड़ी सफलताएं मिली हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी का संकट बहुत बड़ा है, कई प्रजातियां खतरे में हैं, विलुप्त हो रही हैं, लेकिन हम सफल भी हुए हैं। जैसे वेल के शिकार पर जब इंटरनेशनल बैन लगा, उसके बाद हम्पबैक वेल की आबादी में जबरदस्त वापसी हुई है।
अरे वाह!
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने मिलकर ओजोन परत को बचा लिया। अमेरिका में DDT बैन होने के बाद बाल्ड ईगल पक्षी वापस आ गए। ये सब दिखाते हैं कि जब हम मिलकर ठोस कदम उठाते हैं तो नतीजे मिलते हैं। ये निराशाजनक नहीं है।
और मछलियों के मामले में क्या समुद्र वाकई खाली हो रहे हैं जैसा हम सुनते हैं?
कहानी यहाँ भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सच है कि कई मछली स्टॉक, मतलब किसी खास इलाके में खास मछली की आबादी, अतीत में कोलैप्स हुए हैं या आज भी दबाव में हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जहां साइंटिफिक सलाह और नियमों के आधार पर फिशरीज मैनेजमेंट होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में, वहां ज्यादातर स्टॉक या तो स्थिर हैं या बढ़ रहे हैं।
अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ है?
प्रॉब्लम है अनरेगुलेटेड, अवैध और बिना रिपोर्ट वाली मछली पकड़ना, खासकर इंटरनेशनल पानी में या जहां मैनेजमेंट खराब है। तो यहां भी समाधान क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट को दुनिया भर में लागू करना और साथ ही एक्वाकल्चर यानी मछली पालन को टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देना।
तो इन सभी उदाहरणों से कुछ बड़े थीम्स या संदेश उभरते दिख रहे हैं। पहला तो यही कि आंकड़ों पर आधारित आशावाद, वो जो डेटा ड्रिवन ऑप्टिमिज्म है, वो निराशावाद से ज्यादा उपयोगी है।
हाँ, क्योंकि डेटा हमें पूरी तस्वीर दिखाता है, सिर्फ वो डरावनी हेडलाइंस नहीं। और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, बल्कि सबूतों पर आधारित निष्कर्ष है। दूसरा कि समस्याएं गंभीर हैं और उन्हें हल किया जा सकता है। हमें इस और को अपनाना होगा। क्लाइमेट चेंज एक खतरा है और रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती हो रही है, दोनों बातें एक साथ सच हैं।
तीसरा वो डीकपलिंग का आइडिया कि हम विकास और पर्यावरण विनाश के बंधन को तोड़ सकते हैं, ये वाकई में गेम चेंजर है।
चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल संदेश, सिस्टम थिंकिंग बनाम इंडिविजुअल गिल्ट। मतलब हमें बड़े लीवर्स पर ध्यान फोकस करना होगा। हमारी एनर्जी कैसे बनती है, हमारा भोजन कहाँ से आता है, हमारे शहरों का कचरा कहाँ जाता है।
हाँ, सिर्फ प्लास्टिक स्ट्रॉ या कपड़े के थैले पर सारा ध्यान लगाकर हम बड़ी तस्वीर से चूक जाते हैं।
बिल्कुल, भारत जैसे देश के लिए ये बहुत जरूरी बात है कि हमें व्यक्तिगत रिसाइक्लिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए या फिर नेशनल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर।
जवाब शायद साफ है। और पांचवा, हमें पिछली सफलताओं से सीखना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिखाता है कि जब दुनिया के देश मिलकर काम करते हैं तो असंभव लगने वाली चीजें भी हो सकती हैं।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं, उन्हें सीधे कोट करना तो मुश्किल है, पर उनका जो सार है वो समझा जा सकता है।
हाँ बताइए, जैसे?
पहला विचार ये है कि मानव इतिहास में ये शायद पहली बार है कि हमारे पास सचमुच रियलिस्टिकली एक ऐसी दुनिया बनाने का मौका है जो सस्टेनेबल भी हो और सभी के लिए प्रॉस्परस भी हो। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास समस्याओं को समझने के लिए डेटा है और उन्हें हल करने के लिए टेक्नोलॉजी है। ये एक अभूतपूर्व अवसर है।
ये एक पॉजिटिव नजरिया है। और
दूसरा विचार ये कि हमें अपना ध्यान छोटे मोटे व्यक्तिगत प्योरिटी टेस्ट से हटाना होगा, जैसे स्ट्रॉ इस्तेमाल किया या नहीं, कपड़े का थैला लाए या नहीं, और बड़े पैमाने पर सिस्टमिक सॉल्यूशंस पर लगाना होगा। हमें सिर्फ जागरूक उपभोक्ता नहीं बल्कि सिस्टम विचारक बनना होगा। सोचना होगा कि हमारे एफर्ट्स का सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा।
सही बात है।
और तीसरा विचार थोड़ा झकझोरने वाला है। वो कहती हैं कि निराशावाद उन लोगों के लिए एक लग्जरी है जिन्हें निष्क्रियता के परिणामों के साथ नहीं जीना पड़ेगा।
मतलब
दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर लोग, जो क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनके लिए निराशावाद एक सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी है, एक हार मान लेने वाली भविष्यवाणी। हमें ये विश्वास करना होगा कि ये समस्याएं हल हो सकती हैं, क्योंकि हमें उन्हें हल करना ही होगा। इसमें एक मॉरल अर्जेंसी है, एक नैतिक अनिवार्यता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं?
ये किताब इको एंग्जाइटी से लड़ने में मदद कर सकती है। आंकड़ों को समझने से वो जो लाचारी वाली फीलिंग होती है ना, वो कम होती है। हम ज्यादा सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं, उन कामों पर फोकस कर सकते हैं जिनका वाकई बड़ा असर होता है, जैसे अपने खाने पीने में बदलाव लाना, खासकर रेड मीट कम करना या अपनी एनर्जी कंजम्पशन कम करना। ये छोटे मोटे रिसाइकलिंग नियमों पर चिंता करने से शायद कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो।
और सामाजिक स्तर पर बातचीत में?
हाँ, हम बातचीत का रुख बदल सकते हैं। जब कोई सिर्फ निराशा वाली कहानी सुनाए, तो हम फैक्ट्स और सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपना सकते हैं, सिर्फ पर्सनल एक्शंस के बजाय पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के बारे में सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए जहां इतने बड़े बदलावों की जरूरत है, चाहे वो एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो या शहर हो, ये सिस्टम थिंकिंग बहुत बहुत जरूरी है।
मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जो सबसे सरप्राइजिंग सीख थी, वो शायद यही थी कि पीक डिफॉरेस्टेशन का दौर ग्लोबल लेवल पर शायद बीत चुका है। ये उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि हम अक्सर कितनी पुरानी या अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं।
और मेरे लिए वो जरूरी आशावाद और सिस्टम सोच की शक्ति पर जो जोर है, वो सबसे अहम है। ये समझना कि समस्याएं भले ही पहाड़ जैसी दिखें, लेकिन हमारे पास उन्हें हिलाने के लिए औजार और बुद्धि दोनों हैं, और हमें अपनी एनर्जी सबसे कारगर औजारों पर लगानी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावटी कामों पर। ये दुनिया की समस्याओं को देखने का एक ज्यादा एक्टिव और कम निराशाजनक तरीका है।
तो चलिए, आज की इस ज्ञान गोष्ठी को यहीं समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने कुज़्निट्ज़्कव की बात की कि कैसे विकास के साथ समस्याएं पहले बढ़ती हैं और फिर टेक्नोलॉजी और नीतियों से घटती हैं। तो सवाल ये है कि विकसित देशों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वे विकासशील देशों को क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करें, ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उन बुरे चरणों को तेजी से लांग सकें।
हाँ, ये सवाल ग्लोबल इक्विटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर इशारा करता है, जिनका जिक्र किताब में भी आता है। इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।